एक आखिरी मिसाल दे के आगे चलती हूँ। आपको पता है नॉर्वे में अमूमन एक घर, एक एवरेज घर हम ले लेते हैं 3 मिलियन क्रोन का आता है, ऐसे ही है ना। ये घर लेने के सिलसिले में मुझे भी कीमतें पता लग गई। अब 3 मिलियन का एक एवरेज घर जो एक नॉर्मल फैमिली ले लेती है, अब आप मुझे बताएं कि अखबार में एक ऐड आ जाए, फिन पे आ जाए, और उसमें लिखा हो कि फुला इलाके में एक घर है वो सिर्फ 3 लाख का मिल रहा है, यानी क्या प्राइस उसकी होगी? 90% गिर गया, सिर्फ 3 मिलियन की बजाय 3 लाख का। कितने लोग दौड़ेंगे और कुछ अकलमंद सोचेंगे कि भाई वजह वजह तो पूछो। बीवियां तो कहेंगी ले ले, दो ले लें, मुफला भी ले लें, और छुपाए हुए सारे पैसे निकाल देंगी, ये रखे हुए थे रख ले ले ले। हाँ, कोई अकलमंद पूछेगा उसको फोन करके मैगलर को कि भाई बताओ ये 3 लाख का क्यों है? वो कहेगा असल बात पूछ लिए तो आपको बता देता हूँ, वैसे तो लोगों ने पूछी भी नहीं लेकिन आपने पूछी है। असल में ये जो घर है ना जिस जगह पे, इसके पीछे बिल्कुल समंदर का एक कोना है और अगले 5-6 साल में समंदर का पानी इसके अंदर आने वाला है। या वो कह सकता है कि इसके नीचे दीमक लग रही है और वो कुछ महीने या कुछ सालों में इसके अंदर आ जानी है। लेंगे वो 3 लाख का? या कोई कह दे कि इधर बंद टूटने वाला है और ये कुछ दिनों में डूबने वाला है घर, लेंगे? आपको तो ये मैं इमेजिनेशन से बता रही हूँ ना, बिलीव मी, रियलिटी में ये हमने बहुत करीब से देखा। ह्यूस्टन में जब हम रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बिल्कुल करीब ही, यानी सबसे क्लोजेस्ट आप कह लीजिए कि जो स्टेट है ना, जैसे सूबा आप कह लीजिए पाकिस्तान की जुबान में, तो वहाँ हर साल सैलाब आता था। लुइसियाना एक स्टेट है, टेक्सास भी स्टेट है उसके साथ, लुइसियाना बहुत क्लोज है हमारे, हर साल एक दफ़ा लुइसियाना में कोई ना कोई कैटरीना रीटा हरिकेन आता है, यानी समंदरी तूफान। जब वो समंदरी तूफान आता है ना तो लोगों के घरों में घुस जाता है। तो फिर जब ऐसा होता था तो रेस्क्यूज की टीमें बनती थी, फिर लोग माइग्रेट करके ह्यूस्टन में मोस्टली आते थे, कुछ को गवर्नमेंट रखती थी कुछ खुद आ जाते थे। मस्जिद में एक दफ़ा एक सिस्टर से मुलाकात हुई, न्यूली यंग बच्ची थी, न्यूली मैरिड लग रही थी, मेरे लिए सीरियन थी, बड़ी प्यारी सी, और उसके पास छोटा सा बेबी भी था। थोड़ी दोस्ती हुई, बात शुरू की कहाँ से, कहती कि वी आर फ्रॉम लुइसियाना, कहाँ रहते हो? वहाँ एक छोटा सा शेल्टर होम है, गवर्नमेंट फिर उनके लिए वक्ती तौर पर इंतजाम करती है। खैर सारी बात छोड़ दीजिए जो उसने अपनी कहानी सुनाई। कहने लगी कि हमारा खूबसूरत घर था, वी बॉट, शादी हुई उसके बाद बड़ा खूबसूरत घर लिया, अभी कुछ महीने गुजरे ये ग्रावीद हो गई, आपकी जुबान में प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। खैर उसके बाद क्या हुआ, कहती है कि उतने में वो कुछ सैलाब आना था तो रातों रात गवर्नमेंट की तरफ से आवाज़ आई कि आप लोग जान बचा के निकल जाए। कहती खड़ा घर था, सिर्फ गाड़ी में मैं, मेरा शौहर, कोई ज़रूरी चीज़ें जो भी डाल के, तो हम गाड़ी निकाल के बाय रोड लोग आ जाते थे टेक्सास, ह्यूस्टन आ गई। इधर गवर्नमेंट ने शेल्टर्स में जगह दे दी, फिर वाकई वही हुआ, खबरों में पता चला बड़ा ज़बरदस्त तूफान आया। फिर कुछ ऐसा होता है 15-20 दिन के बाद जब तूफान वो पानी चला जाता है, फिर घरों में पानी होता है, ये है वो है, फिर गवर्नमेंट कहती है लोगों को कि जाएं देखें पीछे आपके घरों का क्या हाल है। तो ये कहती है कि मैं फिर 1-2 महीने के बाद जब हम वापस गए, अब उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे कि मेरा वो ब्रांड न्यू घर जिसको मैंने इतने शौक से बनाया, उसको मैचिंगों में सजाया, कहती वो पूरा घर जिसको आपकी जुबान में काई कहते हैं, सबजुली, कहती पूरा घर मेरा वो ग्रीन हुआ हुआ था, उसके अंदर पानी कितने महीने, कितने दिन या महीने खड़ा रहा, एवरीथिंग वो ऐसे लेस थी कि वो अब कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तो मुझे उसकी बातें सुन के तकलीफ हो रही थी, तो मैंने कहा कि देन यू फील सैड, तुम्हें दुख हुआ होगा? कहती नो, क्यों? कहती बिकॉज माई बेबी इज विद मी एंड माई हस्बैंड इज विद मी। और जब मुझे वो मिली तो उसका बेबी था, फिर वो बेबी उसकी ह्यूस्टन में हुई, 6-7 महीने हो चुके थे तो उसको आए। कहती मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो तूफान आ जाता, मैं और मेरा बेबी या मेरे हस्बैंड सब बीच में होते तो हम खत्म हो चुके होते, घर तो अल्लाह फिर भी दे देगा। दुनिया में ऐसे घरों की क्या वक्त रह जाती है, तो आप मुझे बताइए कि इस जमीन पे तो जलजिले भी आने हैं, इजा जुलजिला तिलर्दु जिलजालहा वखरजत तिलर्दु अस्कालहा, इधर तो बिजलियां भी गिरनी है, इधर समा उन शक्कत, या आसमान टूट टूट के जमीन पे गिरना है, वैजल बिहार उफज्जीरत, वैजल बिहार उसज्जीरत, सारी जमीन पे पानी आने और इन समंदरों में आग लगनी है, खबरों पे यकीन है ना? ये सारी खबरें जिसको पता है। और एक तरब अल इन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलत मोरिदून, हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो अभी तक गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। मुझे बताइए फिर अकलमंद है वो जो इस दुनिया पे फिर पैसा लगा रहा है? जरूरत अल्लाह ने पूरी करने को कहा, ख्वाहिश पूरी कर ले, लेकिन जहां आपकी ख्वाहिश और दीन की जरूरत के रास्ते में टकराव आ जाए तो ये तबूक का मौका बन जाता है। आप देखिए बाद में सहाबा किराम ने घर भी बनाए, सब कुछ किया, लेकिन जब तक मदीना के वो शुरू के 10 साल जो नबी की जिंदगी के थे वो बड़े तलख साल थे, कि एक शख्स को आपने एक कमरे पे दूसरा कमरा बनाते देखा तो नागवारी से देखा, कुछ नहीं कहा। बाद में लोग आए कहने लगे, तुम्हें बताए इधर से नबी सल्लम गुजरे थे? अच्छा गुजरे थे तो फिर क्या हुआ? कहा बस तेरे इस कमरे को नापसंदीदगी से देखा। अच्छा, खुदा लेकर आए वो कमरा गिरा दिया कि मुझे ये कमरा नहीं चाहिए, कि जिसको देखकर अल्लाह के नबी का मिजाज बदल गया। वजह क्या थी? कि अल्लाह के नबी डबल स्टोरी घर के दुश्मन थे? नहीं, जरूरत है इस्लाम को एक एक पैनी की और तुम अब अपनी ऐश के लिए घर बड़ा कर रहे हो। ये है सदुका, बात समझे? देखिए माँ खुद भूखी हो भूखी रह लेती है, बच्चा भूखा हो तो माँ भूखी रहती है। सच बताएं, मैंने तो जब भी करीब से माओं को देखा है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये दुनिया में तेरा एक मौजज़ा ही फिर रहा है, ये माँ ही है। वो एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था कि अगर तुमने आज के दौर में किसी वलीउल्लाह को देखना है ना, तो घर में उस औरत को देखो जो उस आधा दिन किचन में गुजारती है। अभी रमजान आएंगे ना, सारा दिन खड़े होकर इफ्तारियां बनाएगी और रात मगरिब पे सब खा रहे होंगे, कोई उसके मुंह में खजूर डाल दे तो वो खा लेगी, और सब उठ के नमाज पढ़ के आके खा रहे होंगे तो वो भी दोबारा चीजें ही सही कर रही होगी। उसके नसीब में क्या कर करा के नमाज थोड़ी बहुत पढ़ के सोएगी, तहज्जुद में फजर में उठकर फिर सहरियां पका रही होगी, और उसके नसीब में है नहीं, वो सबको खिला रही है। बताओ इससे बड़ा वलीउल्लाह आज के दौर में कौन होगा? औरत, माँ, बेटी, बीवी, ये दूसरों को सर्व करती है। अब आप बताइए कि माँ को पता है कि मेरा बच्चा भूखा है तो खाएगी जाके बाहर बर्गर? आप इधर ही बैठी हैं अभी, आपको क्या आइए खाना खाते हैं और आपके घर में बच्चे भूखे बैठे हों, हालांकि आपको पता है कि घर भरे पड़े हैं खानों के। वो तो शुक्र करेंगे अम्मा नहीं है, हम ऑर्डर करके मंगा लें। पिज्जे वाली माँ सलामत रहे, और क्या कहते हैं मैकडोनल्ड वाले सलामत रहे, वो कर दे देंगे। यहाँ तो कुछ टाइम है, पाकिस्तान में तो आधी रात मिडनाइट डील्स भी बड़ी हैं, आप रात को फ़ोन करें उनको दे दो, हमें दे देते। वो माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, करते हैं ना? नहीं गले से उतरता ना अपने बच्चे के बगैर, शौहर से प्यार हो सच बताए उसके बगैर गले से उतरता है। तो फिर आप इसको, ये है सदका। सदके की हकीकत अल्लाह से सच्चा होना है और अल्लाह के दीन में सच्चा होना। फी सबील अल्लाह का लफ्ज़ बोलते हुए शर्म नहीं आती हमें, जब हम जो बचा खुचा उठा के कहते फी सबील अल्लाह दे दो। किसी को अपने नाम पे शादी पे गिफ्ट देना हो तो किस तरह देंगे, और फी सबील अल्लाह कहते बच कुछ दे दो। आज सुबह हम बड़े ही शर्मिंदा हुए हैं कि नहीं? 30 किस्म का बुखल पड़ा है आज हमने सुबह दौरे कुरान में। इतने बखील हैं हम, मासियों के साथ बुखल करते, रिक्शे वालों से पैसे घटवाते, छाबड़ी वाले से हम पैसा पैसा कम कराते हैं, लेकिन कभी जाके हम मार्क्स एंड स्पिंजर में कम नहीं कराएंगे, और फॉलीज में जाके कम नहीं कराएंगे, और सीयर्स में जाके कम नहीं कराएंगे हम, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही खाल उतारी होती है। हम कहते चुप कर दो, दे दो जो मांग रहे हैं। करवाते किन से? वो गरीब, इतवार बाजार, रेहड़ी वालों, रिक्शा ड्राइवर, मासियों से बुखल करते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि ये हमारी चीज है। एक और बात भी समझ लें कि जब ये यकीन हो जाता है ना ये मेरा नहीं है, तो फिर उसके बाद बंदे को और भी यकीन आ जाता है कि जिसकी चीज है अगर वो मांग रहा है तो मैं उसको क्या दूंगी। देखिए ना, आपने अपने बेटे को फोन ले दिया, बेटी को ले दिया, फिर आप जब कहेंगे बेटी जरा देना एक कॉल कर लूं, तो नाराज होगी कि खुश? खुशी से देगी कि और आपको ना दे आगे से नखरे करे तो आप खुश होंगे? आप कहेंगे देखो इसको मैंने इसलिए लेके दिया था। तो याद रखिए, मेरा नहीं है, मुझे किसी ने दिया। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से दे दो जो हमने ही तुमको दिया। तो बहरहाल बिल्कुल सदका नहीं दिया जाएगा जब तक अल्लाह से प्यार नहीं होगा। सदके की रूह अल्लाह से प्यार है, अल्लाह से जुड़ना है। ये नहीं है तो दिया हुआ भी बस ऐसे ही, वो बलाएं तो टल जाएंगी, वक्ती तौर पे बीमारी भी चली जाएगी, लेकिन वो आखरत में क्यामत के दिन साया नहीं बनेगा। अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल को कहा था, उनफिक, खर्च कर और ख़त्म होने का खौफ ना कर। अल्लाह के नबी के पास जब कोई चीज़ होती थी वो ऐसे खर्च करते थे। एक शख्स नॉन मुस्लिम था, ऐसे ही आजमाने के लिए आ गया, कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे क्या देगा? कहा तू बोल क्या लेता है, ये बकरी है, ये रेवड़ है। एक एक करके मांगता गया, वो शायद लालच में था या आजमा रहा था, हत्ता के कहने लगा अगर मैं तुमसे ये पूरी बकरियों का जो रेवड़ था जो ये सारा मांगू तो ये मुझे दे देगा? आपने कहा ले ले। वो शख्स बकरियों का पूरा रेवड़ लिया, अपने कबीले के वालों के पास गया, जाके अपने कबीले वालों के पास मुबल्लिग बन गया। ओ लोगो, मोहम्मद का दीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपना लो कि उनको फकर का अंदेशा नहीं है, उनका दिल इतना खुला हुआ है। तो अब ये जो बात हम कर रहे हैं सदके की, तो कुल्लू मारूफिन सदका, कैसे, ये भी एक हदीस है, हर नेकी सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म के हर जोड़ पर हर दिन सदका वाजिब है, क्योंकि आप देखिए ना, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत तो होती है ना। तो जिस्म के 360 जोड़ है ना आपके मेरे, 360, अब आप और मैं हर जोड़ का सदका करें तो कैसे करें? आपको मुझे जो जिस्म मिला है, आप मुझे बताइए, क्या आप और मैं इस जिस्म की कोई ज़कात देते हैं, कोई कीमत देते हैं? अल्लाह को आंखों का कोई बिल आया कभी, कानों का बिल कभी आया? नहीं आता ना। तो फिर इसकी ज़कात देने के लिए क्या तरीक़ाकार है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसी किस्में हैं सदके की कि जिनको करके बंदा अपने जिस्म के इन जोड़ों के सदके दे सकता है। कैसे? मसलन सबसे पहली चीज, अब मैं कुछ हदीसें हैं, तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उन सब के अंदर से समअप करते हुए एक लिस्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं है, बिलफर्ज नहीं है, या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, कैसा करें, क्या करें, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, तो उसकी एक थोड़ी सी लिस्ट बना लीजिए। नबी सल्लम ने फरमाया कि कुल्लु तस्बीहुन सदका, सुबहान अल्लाह कहना सदका है। कहिए जरा इस सोच के साथ, सुबहान अल्लाह। कुल्लु तकबीरिन सदका, अल्लाह अकबर कहना सदका है। कोई जोर लगा? फिर आप देखिए, कुल्लु तहमीदिन सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। अब लिस्ट बना लें, हदीसें सारी मेरे पास मौजूद हैं, लेना चाहें तो ले लें बाद में। अमर बिल मारूफ सदका है, यानी कोई बैठा और आप उसको अच्छे काम का हुक्म देते हैं ना, सदका है। और हर बुरे काम से रोकना सदका है। कोई सिगरेट पी रहा है और आप जाके कहते हैं, भाई क्यों अपनी जान पे ले रहे हो, आपने बुराई से रोका ना, ये भी सदका है। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि बीवी के हकूक पूरे करना सदका है। कौन से? शोहर बीवी का हक, यानी एक खास ताल्लुक की तरफ इशारा है। नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई शोहर अपनी बीवी के पास आता है, ख्वाहिश पूरी करता है, तो उसको सदके का सवाब मिलता है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कैसे? ये तो हम अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। कहा, अगर ये ख्वाहिश तो गलत जगह पे पूरी करता तो क्या गुनाह ना होता? और दूसरी बात देखिए कि दर पर्दा बीवी की भी तो ख्वाहिश पूरी शोहर ने की ना, तो ये भी सदका है। ये अल्लाह ताला के दिए हुए वो तरीके हैं कि अगर अच्छे ताल्लुकात हों तो आप सवाब की खातिर भी ये मामला बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए, इस्तिग़फार करना सदका है। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि रास्ते से पत्थर और कांटेदार चीज और हड्डी का उठा देना सदका है। अंधे को रास्ता बता देना सदका है। गूंगे या बहरे को इशारों से बात समझा देना सदका है। नावाकिफ को राह बता देना सदका है। कोई आना चाह रहा था इधर, पता ही नहीं उसको रास्ता, आपने बाहर से देखा कि ये सिस्टर थोड़ी लॉस्ट लग रही हैं, आप खड़ी हो गई, वो पूछते हैं नूरुल कुरान की तरह लिखा हुआ तो है, रास्ता नहीं मिल रहा, आप कहते हैं अच्छा इधर से आए, घूम के आए, नीचे आए, आपने ये भी सदका किया। कितनी आसानी वाला ये सदका है। फिर इसी तरह से आप देखिए, फरमाया जो मदद के लिए पुकारे उसकी मदद के लिए जाना सदका है। दौड़ के जाए खुशी से। और ये सारी हदीसें हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रही, सिर्फ वक्त की कमी के लिए आपको मैं लिस्ट दे रही हूँ। फरमाया कमजोर नजर वाले, जिसका आई साइट वीक है, उसकी रास्ते की तरफ रहनुमाई कर देना सदका है। कलिमतुन तय्यबा, अच्छी बात करना सदका है। आप देख रहे हैं आपकी हमसाई हैं बेचारी डिप्रेस है, आप जाके उनको अच्छी सी बात कर दें, खुश कर दें, कैसी हैं आप, खुश कर दें, उनकी तारीफ कर दें। आप देखिए कि बहुत आसान है मुसलमान का दिल खुश करना, इंसान का दिल खुश करना, हमें इसका पता चल जाए तो मैं कहती हूँ हम यही कुछ करते रहें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हें पता है किसी के दिल में खुशी भरना ये कितनी बड़ी नेकी है, और हमारे पास सारा दिन इसका वक्त होता है, लेकिन हम कहते हैं हाँ रहने दो अब इतना, हम क्यों इनके पीछे लगे। फिर इसी तरह से आप देखिए, किसी को पानी का घूंट पिलाना, अपनी बोतल में से पानी निकालकर दूसरे को पिला दें, ये भी सदका है। फिर फरमाया, वो माल जो तुम अपने बच्चों की परवरिश पे लगाते हो वो भी सदका है, और जो तुम अपने खादिम को खिलाते हो, खिदमत आपकी उसने की लेकिन आप उसको कुछ देते हैं, यानी नौकरों को जो हम देते हैं पैसे वगैरह, वो भी सदके में आते हैं। फिर इसी तरह फरमाया, जो तुम अपनी जात पे लगाते हो, क्यों लगाते हैं हम, खाएंगे तो ताकत आएगी ना, इबादत करेंगे। अगर सर्दी से बचेंगे, स्वेटर जैकेट पहनेंगे, तो सेहत के साथ इबादत करेंगे, अपने घर के काम करेंगे, ये भी सदका है। फिर इसी तरह एक सदका जो बहुत ही आसान है, तबस्सुम का वजह, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आना अपने किसी भाई को देखकर। अब ये नहीं कि आप भाइयों को देख स्माइल देने लग जाएं, भाई भाइयों को दें तो बहनें बहनों को देंगी, स्माइल दे दिया करें। क्या जाता है आपका मेरा स्माइल से, आपको पता है कि कैसा प्यारा बॉन्ड बन जाता है, आपस में ताल्लुक जुड़ने लगता है। फिर इसी तरह से आपने फरमाया कि अपने डोल में से पानी निकालकर दूसरे के डोल में डाल देना, ये भी सदका है। कभी करके तो देखें, आपके पर्स में पैसे हैं, उधर से निकाल के दूसरे के पर्स में डाल दें, शक है आपको कि उसके पास नहीं है, ये ले नहीं रही कोई चीज, गड़बड़ है, कोई कमी जरूर है। फरमाया ये भी सदका है। और सबसे बढ़ के हर नेकी सदका है, कुल्लू मारूफ इन सदका। फिर आपने फरमाया मेहमान की जियाफत 3 दिन तक है, घर में मेहमान आते हैं ना, पकाते हैं ना, 3 दिन तक उसका हक है, उसके बाद जो भी उसको खिलाओगे वो सदका है। आप आए मेरे घर में, आपके लिए खाना बनाऊं, ये मेरा आपकी तरफ सदका होगा। कितनी आसान नेकी है। और देखिए खिलाते हम सारा दिन है, पर खिलाना अल्लाह के लिए, ये नहीं कि बाद में बातें करें और बाद में कह दी खिलाया क्या और पिलाया क्या। और सदके की एक बड़ी यूनिक किस्म है, और फरमाया कि लोगों को अपने शर से बचाना, ये भी सदका है। यानी किसी के शर को तो छोड़ें, यानी आप किसी को तकलीफ दे सकते थे, मिसाल है आप कहते हैं पानी दे दो, लेकिन आप कहते हैं मेरे लिए ये उठेंगी फिर जाएंगी, मुश्किल होगी, मैं खुद ही ले लेती हूँ, ये भी सदका है। फिर इसी तरह दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना, ये भी सदका है। है कोई हमारे इर्द गिर्द रूठे हुए, मैं कहती हूँ खानदानों के खानदान रूठे हुए, हम कहते हैं अब रूठे रहे फिर हम क्या करें, ये सदका आपने अभी करना है रमजान से पहले, अभी चंद दिन अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश कीजिए रूठे हुओं को मना ले, आपको की कोशिश का अजर मिलेगा, अल्लाह सुबहाना तआला आपके लिए आसान कर दे, आपको फायदा होगा इसी में, लेकिन कोशिश जरूर करें अपने रूठे हुओं को भी मना ले, कुछ नहीं होगा, मन तवादा लिल्लाह ही, जो अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके लिए आसानी कर देगा। फिर इसी तरह किसी को सवारी पे बिठाना भी सदका है। आप अकेले आते हैं ना, आज मुझे नहीं पता आप किस किस के साथ आए हैं, यकीन कीजिए कि आप किसी को अगर लेकर आए हैं आपने इतना सदका किया, वो फरिश्ते हिसाब किताब कर रहे होंगे इनका गैस कितना लगा, उसमें अगर एक ने आना था तो इसके नाम इतना खर्चा था, अब 5 आ गई हैं तो ये इसका हिस्सा बांट दो, एक इसके हिस्से का इसको दे दो, बाकी जाके इसका सदके में लिख दो। ये ग्लासेस तेज हो जाए ना तो हम कभी नहीं किया ना छोड़ा, हम तो मिन्नत करें, मैंने नहीं जाना अकेले, बैठो तुम मेरा फायदा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और मैं अक्सर कहती हूँ दौरे कुरान में तो खास तौर पे कहती हूँ कि गाड़ियां खाली ना लाया करें, क्योंकि पार्किंग के मसले क्या कुछ इश्यूज होते हैं, और 5 औरतें बेचारी गाड़ियां पार्क कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, टोकन ढूंढ रही हैं, एक गाड़ी में 5 आ जा जाए, कल दूसरी की गाड़ी में 5 आ जाए, परसों तीसरी की में आ जाए, तो हमेशा इसकी कोशिश किया करें, खुद पूछा करें कि आपको राइड की जरूरत तो नहीं, थोड़ा सा आपको इधर उधर होना भी पड़ा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर आपने फरमाया कि किसी के पास देखो सामान ज्यादा है, उसका सामान जाकर उठवा दो, ये भी सदका है। एयरपोर्ट्स पे हम होते हैं, जहाजों में बैठते हैं, पकड़ लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं, किसी का बच्चा रो रहा है आपके ले लीजिए, कि आप जाइए आप अपनी करवा लीजिए इमिग्रेशन, मैं आपके बच्चे को पकड़ता हूँ, नो प्रॉब्लम। फिर इसी तरह हर वो कदम जो नमाज की तरफ उठे वो सदका है, अल्लाह हमारे मर्दों को इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर आपने फरमाया कि रोज़ा सदका है, उम्रा सदका है, हज सदका है, और जो आप किसी को कर्ज देते हैं ना वो भी सदका है। आप तो उसके ऊपर एहसान चढ़ा रहे हैं ना, इतना पैसा इतने दिन हो गए तुम्हें दिया हुआ है, हर रोज आपको उतना माल सदका करने का जरा है। बस आपने किसी को दिया है, चले आपने 10,000 करोन दिया, उसने कहा मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा, आज से लेकर 1 महीने तक हर रोज आपको 10,000 करोन सदका करने का जरा है। आप गए उसके पास 1 माह के बाद, लाओ भाई दो, कहता मुश्किल आ गई है दे नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ 1 हफ्ता और दे दे। उस दिन से लेके अब अगला 1 दिन हर दिन उससे डबल सदका है। मैं तो कहती ले लो मुझसे कर्ज और ना दो, ये कहूंगी कि कल दे दो वापस, क्योंकि 1 दिन का तो मुझे सिंगल सवाब मिले और कल से मेरा डबल अजर मिले, साल पूरा ना देना मुझे नहीं चाहिए। नजर तेज करें तो नेकियों के बहुत सारे मौके इंसान के पास आते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि तंग दस्त है कोई, आप मोहलत ही देते जाते हैं, इस पे भी सदके का अजर है, फायदा आपका अपना होगा किसी से ज्यादा। और एक खूबसूरत सदका फरमाया, जिसने कोई खेत लगाया उसमें से कोई परिंदा चुग गया, किसी जानवर ने कुछ खा लिया, राह चलता कोई इंसान उधर से कोई चीज तोड़ के खा गया, ये वो खेत लगाने वाले को सदका का अजर मिलेगा। फिर मुलाकात के वक्त सलाम कहना, अस्सलाम वालेकुम कहना सदका, हेलो हाय बाय कहने से तो बात नहीं है। और फिर इज्जत के सदके की तो बात की है ना, और अक्ल का सदका। फिर आप देखिए कि सुबह के जो नफिल होते हैं, चाश्त के जो नफिल पढ़ता है इंसान, सिर्फ दो नफिल, सनराइज हुआ, फजर से बैठे रहिए चाहे नमाज पे, दुआएं कीजिए, जिक्र अजकार कीजिए, तिलावत कीजिए, फजर के वक्त कुरान की बड़ी तिलावत की इज्जत है, कदर है। उसके बाद जो ही सनराइज हुआ, सिर्फ दो नफिल हल्के से पढ़ लें। आपने फरमाया ये जिस्म के ये जो 360 जोड़ है, आप देखिए ना हमारी उंगलियों में कितने जोड़ है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ जोड़ है, 360 जोड़ों का सदका बनता है। जिसको जॉइंट्स की पेन है, दर्दे हैं, घुटनों की दर्दे हैं, कमर की दर्दे हैं, आप इस हदीस पे अमल करते हुए जरा सा देखिए, यानी अभी जितनी चीजें बताई है ना, ये परेशानियों और तकलीफों के आने से पहले के सदके हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अगर अल्लाह ना करे कोई हम पे तकलीफ आ चुकी है तो क्या करें, फिर भी सदका इसका हल है। हम डॉक्टरों पे हजारों लगाने को तैयार करते हैं, हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि बहुत सारी चीजों में हम पीछे हो जाते हैं। तो मैंने जब ये मौजू चूज किया तो मेरे दिल में बस एक नीयत थी कि आपका दिल इस बात की गवाही दे कि इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुझे कभी शर्म नहीं आई किसी जगह दुनिया में जाकर इस्लाम की कोई बात करते हुए कि हाय ये कोई बाहर का बंदा ना सुन ले, कहेगा हाय इस्लाम ऐसा। इस्लाम दीन ए फितरत है, इस्लाम कितना खूबसूरत है। अब आप देखिए ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, आप मेरे साथ इस मुल्क में रहते हैं, बिलीव मी अगर हम ऐसे ही हो जाएं तो क्या ये 57 मई को हमें तमगे ना दें कि ये देखो जरा, जहां खीवी से कोई औरत निकलती है तो ये औरतें इनकी उनके थैले पकड़ लेती हैं, क्योंकि थैला पकड़ना सदका है। अब आगे आप खुद देखें, यानी ये तकरीबन मैंने आपको 36 से 38 किस्म की चीजें बताई हैं, अलग अलग करेंगे तो 40 से ऊपर है। अगर मैं और आप इस किरदार में ढल जाएं तो मुझे बताएं क्या लोग इस्लाम को बुरा कहेंगे। हर काम सदका है, आप सोते हैं वो भी सदका है, क्यों कि उठ सोंगी तो फिर ही फजर पे उठूंगी ना। तो अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारी नजर खुल जाए, नेकियों के मौकों को ढूंढने लगें, हर दिन किसी नेकी की नियत करें। आज सुबह उठ के क्या किया है, अबू बकर सिद्दीक फजर की नमाज के लिए गए और उससे पहले सारी नेकियां कर गए। अल्लाह के नबी ने फजर की नमाज के बाद पूछा तुम में से कौन है जिसने सुबह उठ के सदका किया, सब बैठे हुए थे, अबू बकर ने हाथ खड़ा कर दिया। कभी तुम्हें कहां से मौका मिला, कब मस्जिद में आ रहा था तो रास्ते में देखा एक फकीर था तो मैंने सदका कर दिया। आपने पूछा तुम में से कोई ऐसा है जिसने आज किसी मरीज की है आदत की बीमार को देखना, फिर सबके हाथ दबे में तो अबू बकर का हाथ उठ गया, भाई आपको कैसे मौका मिला। कहा अल्लाह के नबी सुबह नमाज पे आने से पहले फुलां दोस्त भाई पता चला बीमार है तो मैंने कहा चलो उसका हाल पूछ जाऊं। और आपको अबू बकर सिद्दीक सुबह उठ के ऐसे बीमारों और बूढ़ों के घरों की सफाइयां कराते थे, उनके कूड़े उठा लेते थे, जो काम अल्लाह के नबी कह रहे हैं उस सब में अबू बकर का नाम है। अबू बकर की नजर बड़ी तेज थी और उनका विजन क्लियर था कि मैं अल्लाह को दे नहीं रहा, मैं उसे ले रहा हूं। तो सारी बात को समअप कर देती हूँ, वही देगा जिसको अल्लाह की बड़ाई का यकीन होगा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम। तीसरे पारे में जहां सदके की आयतें शुरू होती हैं, पहली दफा जहां मुसलमानों को खिताब किया है कि ये लोगों खर्च करो अल्लाह के रास्ते में उस दिन से पहले कि जिस दिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, उससे अगली ही आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिल में अपनी बड़ाई डाल दें, हम अल्लाह के आगे झुकें। देखिए हम बहुत प्यारे दिन आ रहे हैं, अल्लाह ने हम सबको अगर यहाँ आज मिठाया है, आज बुलाया, अपने अपने हिस्से की नेकियां ढूंढें, मैं क्या नेकी कर सकती हूँ। और सबसे प्यारा सदका जो मैंने एंड पे रोका हुआ था वो इल्म का सदका है, इल्म का सदका है। इमाम बुखारी रहमहुल्ला को देख लीजिए, हदीस के इमाम थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं, वो आम दिनों से भड़ के कुरान की खिदमत में लग जाते थे रमजान में। इल्म का सदका, लोगों की बुराइयां चली जाएं, आपकी कोशिशों से किसी के बच्चे ठीक हो जाएं। इस वक्त अगर आप सब सिस्टर्स जो यहां सुन रही हैं, जो घरों से सुन रहे हैं, जो नहीं आ सके, पहले तो अपने आप से कहें कि ये जितनी बातें भी मैंने कही आपको, ये किसकी जुबान की हैं, दुनिया के सबसे सच्चे इंसान की। और कुरान में आयतें खोली तो मैंने आपको गिना दी, 155 टाइम ये लफ्ज आया किसी न किसी फॉर्म में, तो अल्लाह और उसके रसूल की बात सच है ना। अपना वक्त निकालिए, आप जितना वक्त देंगे ना अल्लाह के रास्ते में उतनी बरकत होगी, नींद छोड़ेंगे बरकत होगी, दौरे कुरान आपको पता है जगह जगह शुरू हुआ है, कहीं सुबह का कहीं शाम का। अब क्या मेरे पास अब इतना भी मोहलत नहीं है, यानी क्या मैं ये सोचती हूँ कि बिल्कुल मेरे घर में ही हो जाए, तो घर में भी होगा तो मैंने नहीं करना। चल के जाइए, ढूंढिए, दूर जाइए। सबको मैं ये दावत दूंगी कि आप इसी स्कूल में सुने, सुबह में भी हो रहा है शाम को भी होगा, माशाल्लाह मंडे से शुरू हो रहा है। और मैं अल्लाह को कह सकूं कि नबी ने तो जंगें की, नबी तो मैदाने जंग में गए, हिजरतें की, तो क्या मैं कुरान सुनने के लिए नहीं आ सकती? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके वक्त में भी बरकत दे, सेहत में भी, हमेशा खुश रहें, बी पॉजिटिव, नेगेटिव ना हो। आप ये जो मुश्किलात के हल की बात थी, तो मुझे आज बार बार ख्याल आ रहा था उस किताब का जो मैंने दिसंबर में फ्रांस से पढ़ाई थी। अगर आप में से कोई किसी भी मुश्किल में, आप उसके एक एक चैप्टर को सुनना शुरू कर दें, इतनी उसमें दुआएं, इतने तरीके, माशाल्लाह इतनी मोटी बुक थी, हमने मेरे हाल 5-6 दिन में पढ़ी। उसका लिंक मौजूद है वेबसाइट पे भी, कि हम पे मुसीबतें क्यों आती हैं और उनसे निपटने का हल। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद हमें वाकई यकीन हो जाता है कि बाज़ दफ़ा हम पे हमारे ही अपने हाथों की वजह से कोई मुश्किल आई होती है। तो अल्लाह ताला आपकी, मेरी और हम सब की मुश्किलात को दूर करे। थोड़ी सी दुआ करते हैं आज रमज़ान से पहले, एक दफ़ा मिलके दुआ कर लेते हैं, और अल्लाह ताला हमें इखलास दे, और ये जो खूबसूरत दिन आने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें इनकी खैर लेने वाला बनाए। ये तो लीस्ट बात है ना कि हम कुरान सुनने आए, ये तो मिनिमम लीस्ट है कि रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें। इसके बगैर तो हमारा इस्लाम ही नहीं है। हमने इसे भड़ के करना है, अल्लाह से मांगे इस पूरे रमज़ान में अपने लिए मांगे ही ये कि मैंने अपना वक्त अल्लाह के लिए लगाना है। और हमारा जो इस साल का थीम है वो टाइम मैनेजमेंट है। बहुत कुछ सुनने वाले हैं आप लोग।